आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड आज हमें स्टार्ट करना है हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। सो लेट स्टार्ट। द कंपनी बिकम्स द दीवान। ऑन 12th of August 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट with a new Englishman and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. 12th August 1765 ko jo Mughal Emperor the, unhone East India Company ko Diwan of Bengal appoint kar diya tha. तो ये जो एक्चुअल इवेंट है ये तो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। पहली बात तो इन लोगों के जो दीवानी जो इनको दी गई थी, जो दीवान बना दिया गया था दीवान ऑफ बंगाल मुगल एम्परर्स के थ्रू, तो ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था क्लाइव के टेंट में जहां पर कुछ ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियंस थे विटनेसेस के तौर पर। बट पेंटिंग में ऊपर आपको ये एक मेजेस्टिक इवेंट की तरह यहाँ पर शो किया जा रहा है क्योंकि ये क्लाइव के लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल इवेंट था, तो उसने पेंटर को बोला था कि तुम इसको अच्छे तरीके से दर्शाना क्योंकि वो बहुत बड़ा मेमोरेबल इवेंट था उसके लिए। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब जिस तरीके से कंपनी को वहां का चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था, टेरिटरी उसके कंट्रोल में हो गई थी, तो अब उसको लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन, सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का जो काम था कंपनी का था। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो कंपनी को ये मेक श्योर करना था कि वो इतना यील्ड कर लें, इतना रेवेन्यू कर लें कि वो कंपनी के जो ग्रोइंग एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप कर पाएं और जो ट्रेडिंग कंपनी है उनको भी प्रॉफिट हो ताकि वो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद सके जो उनको चाहिए है और बेच सके अगर वो चाहते हैं तो। कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर वन। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल एम्परर In 1765, तो ये वो पेंटिंग है। Now come to next page. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. इतने सालों से कंपनी को ये चीज समझ में आ गया था कि हमें सावधानी बरतते हुए चलना है, हम एक एलियन पावर है, हम इस कंट्री के नहीं हैं, तो हमें यहाँ का जो पास्ट रूल जो कंट्री साइड है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और जो हमें अथॉरिटी और प्रेस्टीज मिला है उसको तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिनके पास लोकल पावर थी उनको कंट्रोल किया गया और पूरी तरीके से जो उनका थ्रोन था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. तो अब ये सब कैसे हुआ, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कंपनी ने किस तरीके से पूरे कंट्री को कॉलोनाइज किया, किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू रेज किए, कौन सी क्रॉप्स उन्होंने लोगों से बोला कि आप ही उगाओ और लोगों के जो राइट्स हैं उसको किस तरीके से रीडिफाइन किया था उन्होंने। Okay, so come to the first topic, that is revenue for the company. The company had become the Diwan, but it still saw itself primary as a trader. It wanted a large revenue income, but was unwillingly to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. कंपनी वहां का दीवान बन चुके थे लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में ही महसूस करते थे। उनको लार्ज रेवेन्यू चाहिए था, लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए था और वो कोई रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट कलेक्शन का नहीं रखना चाहते थे। उनका एफर्ट था कि रेवेन्यू जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमारे पास आए और जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क है वो हमें बहुत सस्ते से सस्ते दाम पर मिल सके। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो 5 साल के अंदर अंदर जो गुड्स का वैल्यू था बंगाल में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल डबल हो गया। 1865 से पहले कंपनी जो गुड्स परचेस करती थी उसके लिए उसको इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लेकर आना पड़ता था इंडिया एज अ करेंसी और मनी। लेकिन अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है बंगाल से तो कंपनी का जो परचेजेस हैं जो कि उनको एक्सपोर्ट करनी रहती हैं चीजें उसका वो खर्चा निकल आता है। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। आर्टिजन्स वर डेजर्टिंग विलेजेस since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि जो बंगाल की इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा डीप क्राइसिस हैं, क्योंकि जो आर्टिजन्स हैं वो गांव खाली हो रहे थे उनके, क्योंकि उनसे बोला जाता था, फोर्स किया जाता था कि आपका जो भी गुड्स है वो आप कंपनी को लो प्राइसेस में बेचोगे, ये भी नहीं कि नॉर्मल प्राइसेस में, लो प्राइसेस में। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। तो जो पीजेंट थे वो जब अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे थे जो उनसे डिमांड किया गया था, जो भी ड्यूज वगैरह बोले गए थे, जो आर्टिस्ट थे जो प्रोडक्शन करते थे वो भी डिक्लाइन होने लग गया था, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स ही नहीं होता था, इतना पैसा नहीं होता था कि वो कुछ खरीद पाए। फिर एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन जो है वो भी खत्म होने लग गया। देन इन 1770 अ टेरेबल फेमाइन किल्ड 10 million पीपल इन बंगाल। और 1770 में एक बहुत ही बुरा फेमाइन यानी कि सूखा अकाल पड़ा था जिसमें 10 million लोग मर गए थे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। एक तिहाई हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो खत्म हो गया था बंगाल में। यू कैन सी फिगर 2 हियर, अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स फ्रॉम द रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दीज वीकली मार्केट्स, हार्ड सेल द गुड्स एंड बाय व्हाट दे नीडेड। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये एक वीकली मार्केट है मुर्शिदाबाद को जो कि बंगाल में है। तो जो पीजेंट्स और आर्टिजन्स होते थे गाँव से वो यहाँ पर आते थे रोज हाट बाजार में अपनी चीजें बेचने और कुछ सामान खरीदने भी। तो ये मार्केट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था जब बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। तो ये उसका आपको पिक्चर दिखाया है हाट बाजार का। कम टू नेक्स्ट पेज ऑन द टॉपिक द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इफ द इकोनॉमी वॉज इन रुइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। जब पूरी इकोनॉमी ही खत्म हो गई थी तो जो रूलर्स थे उनको क्या लग रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी, अब हमें रेवेन्यू कैसा मिलेगा। तो जो ज्यादातर कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये बोला कि लैंड में इन्वेस्ट करो और एग्रीकल्चर को उन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज किया। हाउ वॉज दिस टू बी डन। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकग्नाइज्ड एज जमींदार्स। तो ये कैसे किया जाएगा, कैसे उसको एनकरेज किया जाए, 2 decades का जो डिबेट था इस क्वेश्चन पे उसके बाद कंपनी ने फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, और उसका टर्म जो था वो था राजाज एंड तालुकदार्स, जिनको जमींदार बोला जाता था, जो आज जमींदार होते हैं ना वो उस टाइम से ही चला आ रहा है। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। तो जो जमींदार अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू उनसे बोला जाता था कि आप पीजेंट से रेंट कलेक्ट करोगे और रेवेन्यू पे करोगे कंपनी को, और जो अमाउंट पे करना है पीजेंट को वो फिक्स रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो ऐसा समझा जाता था कि कंपनी की एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बनी रहेगी और ये जमींदार्स को भी एनकरेज करेगा कि वो लैंड की जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करें। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब जो रेवेन्यू था जो डिमांड किया जाता था स्टेट से वो इंक्रीज नहीं होता था, मतलब इन लोगों ने बोल दिया था ब्रिटिशर्स ने कि हम ये फाइनल रख रहे हैं, ये परमानेंट है जो रेट है रेवेन्यू का, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इससे जमींदार को भी काफी बेनिफिट हुआ, उसने प्रोडक्शन जो था वो लैंड का बढ़ाना शुरू कर दिया। Now, what the problem comes? The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were, in fact, not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindars were sold off at auctions organized by the company. तो जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो जमींदार थे, तो बाद में कंपनी ऑफिशियल्स ने ये ध्यान दिया कि ये लोग तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए, या जो हम बोल रहे हैं वो तो कर ही नहीं रहे हैं, और जो रेवेन्यू होता था, जो कि फिक्स रेवेन्यू होता था, वो इतना ज्यादा हाई होता था कि जो जमींदार हैं वो उसको पे नहीं कर पाते थे, इतना रेवेन्यू उनको पीजेंट से ही नहीं मिलता था। तो कोई भी जमींदार जो कि रेवेन्यू नहीं पे करता था, तो उसको अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था, उसको जो पद मिला था, जो पोजिशन मिली थी जमींदारी की, उससे उसको हाथ धोना पड़ता था। बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जो कि सोल्ड आउट कर दिए गए ऑक्शंस के टाइम पर, जो कि कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड, द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार, बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड एंड हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी जब आया तो सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी थी, जो प्राइजेस थे मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और कल्टीवेशन कम होने लगा था, स्लोली एक्सपैंड हो रहा था। इसका मतलब इंक्रीज हुआ इनकम जमींदार की इनकम में, बट गेन नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू की डिमांड भी इंक्रीज कर दी थी, जो कि परमानेंटली फिक्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इंक्रीज कर दी थी। मतलब अपनी ही बात पे ये लोग खड़े नहीं उतरे। Even then, the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investing. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. अब zamindars को कोई interest ही नहीं बचा था अपने land को improve करने में, क्योंकि उनको पता था कि हम कितना भी कमा लें, लेकिन ये ब्रिटिशर्स हमसे revenue के तौर पर ले लेंगे। कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने पहले ईयर के जो सेटलमेंट थे उस टाइम पर ही अपनी जमीनें खो दी थी, और अब जो थे उसमें से काफी लोग ऐसे थे जो ट्रबल नहीं लेना चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे लेकिन उनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता था। तो जब तक जमींदार अपने जो लैंड है उसको टेनेंट्स को देकर रेंट नहीं पाते थे, इसके अलावा वो लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। नाउ कम टू द एक्टिविटी, व्हाई डू यू थिंक Solebrock is concerned with the conditions of the underwrites in Bengal? Read the preceding pages and suggest possible reasons. So it's your task. Now come to source 1, Solebrock on Bengal riots. So iske baare mein hum ab jaanenge. In many villages of Bengal, some of the powerful ryots did not cultivate but instead gave on their lands to others, the under tenants, taking from them very high rents. In 1806, H.T. Solebrock described the conditions of these tenants in Bengal. बहुत से villages जो थे बंगाल के, उसमें बहुत सारे जो powerful rights थे वो अपने land को cultivate नहीं करते थे, वो अपने land को under tenants को दे देते थे और उनसे काफी ज्यादा high rent लेते थे। तो 1806 में जो H.T. Solebrock थे उन्होंने describe किया है उस time पर क्या situation, क्या condition होती थी एक under tenant की बंगाल में। The under tenants depressed by an excessive rent in kind and by usurious returns for the cattle, seed and subsistence advanced to them can never extricate themselves from debt. In so abject a state, they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation. जो अंडर टेनेंट्स थे उनकी हालत बहुत खराब थी, काफी ज्यादा डिप्रेस थे, उनके ऊपर इतना ज्यादा एक्सेसिव रेंट उनको देना पड़ता था, भले वो कैश हो और चाहे वो काइंड में हो, और हर एक चीज के लिए उनको जो रिटर्न्स है वो मिलते नहीं थे, जो एडवांस भी ले लिया जाता था उनसे, और उनको वो डेट ट्रैप जो था उससे पूरी तरीके से वो कभी निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जितना भी वो देते थे कर्ज और ज्यादा बढ़ता चला जाता था। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindars was high and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land. ही हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशंस। दूसरी तरफ ये था, गांव में जो कल्टीवेटर था वो इस सिस्टम को बहुत ही एक्सट्रीमली ओप्रेसिव तौर पे लेता था। रेंट जो वो देता था जमींदार को बहुत ज्यादा हाई होता था और जो राइट था उसका लैंड पर वो इनसिक्योर था। तो रेंट अगर वो नहीं दे पाता था या वो मनी लेंडर से लोन लेता था और जब दे नहीं पाता था तो उसको उस वो जो लैंड उससे इविक्ट कर दिया जाता था, उस पर कल्टिवेशन उसको काफी जनरेशन तक नहीं करने दिया जाता था। देन अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी। मेनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? So early 19th century के time पर company official ने एक नया system जो था revenue gain करने का वो निकाला, क्योंकि revenues fix कैसे किए जा सकते हैं, उनको तो time के time change करना पड़ेगा ताकि company में ज्यादा से ज्यादा पैसा है और वो लोग अपने जो expenses है administration और trade के उसको bear कर पाए। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt McKenzie devised a new system which came into effect in 1822. The northwestern province जो थे Bengal Presidency के, जिसका ज्यादातर area उत्तर प्रदेश का है, तो वहां पर एक Englishman थे जिनका नाम था Holt McKenzie। उन्होंने एक new system launch किया था जो कि actual में आया था हरकत में 1822 में। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and rights of different groups. उनके हिसाब से ये माना जाता था, मतलब वो ये मानते थे कि जो एक गांव है वो social institution, यानी कि बहुत ही important social institution है North Indian society का, और उनको preserve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उनके इस डायरेक्शन में जो कलेक्टर्स होते थे वो गांव एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, लैंड्स का इंस्पेक्शन करते थे और फील्ड्स को मेजर करते थे और जो कस्टम एंड राइट्स थे अलग अलग लोगों के उसे रिकॉर्ड करते थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। तो एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू हर एक प्लॉट का बना दिया जाता था जिससे ये पता लगाया जाता था कि विलेज में कितना रेवेन्यू ये विलेज दे सकता है। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो डिमांड थी इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, रेवेन्यू की जो डिमांड थी, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स नहीं की जा सकती थी और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम था और कंपनी को पे करने का रेवेन्यू वो विलेज के हेडमैन यानी कि सरपंच का काम था। इस बार जमींदार को ये काम नहीं दिया गया था तो इस सिस्टम को बोलते हैं महलवारी सिस्टम। नाउ कम टू टॉप राइट कॉर्नर, मीनिंग ऑफ महल इज गिवन। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो एक रेवेन्यू स्टेट होता है जहां एक गांव भी हो सकता है, एक से ज्यादा गांव भी इसमें हो सकते हैं। Then come to the Munro system. In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Reutwar or Reutwari. तो जो British territories थी वो south में भी इसी idea के साथ गई, idea of permanent settlement के हिसाब से गई और वहां पर भी यही new system devise किया गया जिसको Reutwari बोलते थे। महलवारी जो यहाँ नॉर्दर्न स्टेट्स में था उसे साउथ साइड में रेवेन्यू सिस्टम बोलते थे। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो ये जो था ये किसने ट्राई किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने साउथ इंडिया में ट्राई किया था ये उन लैंड्स पर, उन एरियाज पर जहां पर कंपनी ने वॉर के बाद टीपू सुल्तान से उन लैंड्स को जीता था। तो ये जो आइडिया था ये डेवलप थॉमस मुनरो के थ्रू किया गया था और ग्रेजुअली ये पूरा जो आइडिया है रेवेन्यू सिस्टम का ये पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स रियोट्स हु हैड tilted the land for generations। तो अलेक्जेंडर रीड और मुनरो को ये लगा कि साउथ इंडिया में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, जो सेटलमेंट है जो वो आज अभी तक जी रहे हैं उसमें उन्होंने खुद ही खेती करी है काफी जनरेशन तक. देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड. तो उनका ये मानना था कि उनकी फील्ड को अलग अलग तरीके से सेपरेटली सर्वे करना है ताकि रेवेन्यू असेसमेंट हम अच्छे से बना पाए. मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज. मुनरो को ये लगता था कि ब्रिटिश जो है उनको पैटर्नल फादर की तरह बनकर और फादर फिगर बनकर उनको रेओट्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. नाउ कम टू प्रीवियस पेज, पेज 29, फिगर 4, थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1819-1826. तो ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे थॉमस मुनरो. नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑल वॉज नॉट वेल. विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम. Driven by the desire to increase the income from land revenue, officials fixed too high a revenue demand. अब जैसे जैसे साल बीतते गए, नए नए सिस्टम इम्पोज होते गए, तो ये सब सारी चीजें एकदम सही नहीं चल रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो लालची थे, वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहते थे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू की डिमांड कर दी पीजेंट से. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रेट्स, फ्लेड द कंट्री साइड. The villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new systems would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. So, हुआ क्या, जब इन लोगों ने इतना ज्यादा high revenue demand कर दिया तो peasants उसको दे नहीं पाए, pay नहीं कर पाए, और रेओट्स जो थे उन्होंने अपना रेओतवारी system छोड़ दिया. Villages जो थे वो रेगिस्तान में तब्दील होते गए ज्यादातर regions में, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, उनके पास अपने लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाद वगैरह कैसे खरीदेंगे वो. तो ये जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये इमेजिन किया था कि हम ये महलवारी रोतवारी सिस्टम लेकर आएंगे और इससे हम पीजेंट्स की लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वो एक रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी एक्चुअल में हुआ नहीं था. नाउ कम टू दिस एक्टिविटी. इमेजिन दैट यू आर अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग अ रिपोर्ट बैक टू इंग्लैंड अबाउट द कंडीशंस इन रूरल एरियाज अंडर कंपनी रूल. What would you write? So it's your task. You have to imagine that what you are going to write. Now come to the topic, crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो कंट्री साइड है, जो कंट्री है, वहां पर सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि हम तो यहाँ पर क्रॉप्स भी ग्रो करवा सकते हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट यूरोप में है. तो लेट 18 सेंचुरी के टाइम पर कंपनी ने पूरा ट्राई किया कि वो अपना जो ओपियम और इंडिगो का जो एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छे से कल्टिवेशन करवा पाए. ओपियम और इंडिगो एक टाइप की इंक हुआ करती थी जो कि कपड़ों को रंगने के लिए यूज होती थी यूरोप में. इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड, The British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, jute in Bengal, tea in Assam, sugar cane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि हम ये चीज भी कर ही सकते हैं, तो उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का कल्टिवेशन करवाना शुरू कर दिया एज पर देयर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में जूट उगवाना शुरू कर दिया उन्होंने, चाय की पत्ती, टी जो होती है आसाम में, शुगर केन उन्होंने उत्तर प्रदेश में, गेहूं पंजाब में, कॉटन जो था वो महाराष्ट्र और पंजाब में, और जो चावल था वो मद्रास यानी कि चेन्नई में उगवाना शुरू कर दिया. वॉट वॉज दिस डन? द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो अब ये किया कैसे उन्होंने, तो ब्रिटिशर्स ने एक वैरायटी ऑफ मेथड यूज किए थे अपने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को एक्सपैंड करने के लिए जो उन्हें जरूरत थे अपने लोगों के लिए. तो हम एक ये जो स्टोरी पढ़ेंगे उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या मेथड उन्होंने प्रोडक्शन का लिया था ताकि वो लोग अपने यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें अवेलेबल करवा सकें. ओके, कम टू दिस क्वेश्चन, डस कलर हैव अ हिस्ट्री? So let's first look out the figure 5, a Kalamkari print 20th century India, and figure 6, a Morris cotton print late 19th century England. Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left, figure 5, shows a Kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton printed design and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing common in two prints, both use a rich blue color, commonly called indigo. Do you know how this color was produced? आप ये जो फिगर देखोगे जिसमें एक इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है, एक इंडियन कलमकारी प्रिंट है और दूसरे में एक मॉरिस कॉटन प्रिंट है. मॉरिस जो है वहां के इंग्लैंड के काफी अच्छे फेमस पोएट है, उन्होंने ये फ्लोरल प्रिंट डिजाइन किया है. तो इन दोनों प्रिंट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन चीज है जो रिच ब्लू कलर यूज किया गया है, जिसको इंडिगो बोला जाता है. तो ये कलर कैसे बनता था? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टीवेटेड इन इंडिया. फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये एक प्लांट होता है इंडिगो, उसको यूज करके ये डाई बनाया जाता है और ये ब्लू डाई यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए. तो 19th सेंचुरी के टाइम पर मॉरिस प्रिंट्स और ये जितने भी प्रिंट्स होते थे, इसके लिए इंडिगो प्लांट्स जो कल्टीवेट होते थे इंडिया में, उससे डाई बनकर एक्सपोर्ट किए जाते थे. और उस टाइम पर इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, उस समय की बात है, तब सबसे बड़ा सप्लायर था. ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. जो indigo plant है वो एक tropics region में, tropical region में grow होता है. 13th century के end तक आते आते India का जो indigo plant है वो use किया जाने लगा जो manufacturers से Italy, France और Britain के clothes को dye करने के लिए. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, woad was more easily available in Europe. तो क्या हुआ कि जो इंडिगो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में उगता था, तो काफी कम अमाउंट ही इंडियन इंडिगो का यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाता था और उसका जो प्राइस होता था वो बहुत ज्यादा हाई होता था, महंगा होता था. जाहिर सी बात होती है, कोई चीज अगर कम प्रोड्यूस होती है और बहुत अच्छी होती है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को और भी कुछ ऐसे अलग अलग प्लांट पर डिपेंड होना पड़ा डाइज बनाने के लिए. तो एक दूसरा प्लांट था जिसका नाम था वोड, उससे वायलेट और ब्लू कलर के डाइज बनाए जाते थे. और ये जो प्लांट है ये टेम्परेट जोन्स में इजीली उग जाते थे, तो ये इजीली अवेलेबल होते थे यूरोप में. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. नाउ व्हाट हैपेंड, जो इंडिगो था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, बहुत फाइन क्वालिटी का डाई होता था. तो क्या हुआ कि जैसे वो नॉर्दर्न ब्रिटेन में वो ग्रो होता था, जो वोड प्लांट था वो नॉर्दर्न ब्रिटेन में, सदर्न फ्रांस में, पार्ट्स ऑफ जर्मनी और ब्रिटेन में ग्रो होता था, तो कॉम्पिटिशन के डर से वोड प्रोड्यूसर जो थे यूरोप के, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो है उसको आप बैन कर दो, क्योंकि ये इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है और हमारे लिए ये काफी बड़ा थ्रेट है. तो इसलिए उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इसका जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो इसे बंद करवा दो पूरी तरीके से. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, वेयर एज अ डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल. बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट. जो क्लोथ डायर्स होते थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे, इंडिगो प्लांट और इंडिगो का जो डाई था उसे प्रेफर करते थे कपड़े डाई करने के लिए, क्योंकि इंडिगो बहुत ही रिच कलर प्रोड्यूस करता था, रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था इंडिगो से. और वोड का जो प्लांट था उससे काफी ज्यादा ना पेल सा हल्का सा कलर प्रोड्यूस होता था. तो जो डायर्स थे वो ये बोलते थे कि हमें तो यही यूज करना है, इंडिगो यूज करना है. तो 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बोला कि आप बैन हटा दो इंडिगो इंपोर्ट पर. द फ्रेंच बिगैन कल्टीवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग्यू इन कैरिबियन आइलैंड्स, द पोर्टुगीज इन ब्राजील, द इंग्लिश इन जमैका एंड द स्पैनिश इन वेनेजुएला. इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो फिर क्या हुआ, जो फ्रेंच थे उन्होंने भी अपने एरिया में इंडिगो उगाना शुरू कर दिया था, जो पोर्टुगीज थे उन्होंने भी ब्राजील में उगाना शुरू कर दिया, इंग्लिश ने जमैकिया में और स्पैनिश ने वेलिजिना में. तो इंडिगो प्लांटेशन जो थे वो काफी जो पार्ट्स थे नॉर्थ अमेरिका के वहां पर शुरू हो गए थे. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ प्लांटेशन. अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन. एक पूरा बड़ा सा फार्म होता है जहां पर एक ही टाइप की क्रॉप या आप कह लो कि एक ही टाइप का जो पेड़ पौधा जो होता है उगाया जाता है, बहुत बड़े हिस्से में उगाया जाता है, जहां पर फोर्स्ड लेबर उस टाइम पर करवाया जाता था. और ज्यादातर जो प्लांटेशन होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन, इन सबसे रिलेटेड होते हैं. ओके, सो आज की हमारी क्लास यहीं तक है. इन आर नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विद द थर्ड पैरा ऑफ दिस टॉपिक. सो टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.